आज है 24 अक्टूबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका इंडिया बोल में, मैं हूं सुशीला सिंह। प्रदूषण को कम करने और लोगों को सार्वजनिक वाहनों में चलने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से कार फ्री डे कैंपेन चल रहा है। पहले गुड़गांव और फिर दिल्ली के कुछ इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस तरह की पहल से कोई असर पड़ेगा या ये केवल सांकेतिक है? कितना अमल में ला पाएंगे लोग इस आदत को और क्या वाकई एक दिन की कोशिश से प्रदूषण पर लगाम लग पाएगी? आज इंडिया बोल में होगी इसी मुद्दे पर बहस, लेकिन थोड़ी देर में पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू पायलट के तौर पर शामिल करने की इजाज़त दे दी है। आज भारतीय वायुसेना की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि एयरफोर्स अकादमी के मौजूदा बैच में ट्रेनिंग हासिल कर रही महिला पायलटों में से ही लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए महिलाओं का चयन किया जाएगा। इस बयान के मुताबिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जून 2016 से महिला पायलटों को वायुसेना में लड़ाकू पायलट के तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। इसराइली और फलस्तीनियों के बीच जारी हिंसा को ख़त्म करने के लिए अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने फलस्तीनी नेता महमूद अब्बास से मुलाकात की है। इसराइली पुलिस के मुताबिक जॉर्डन में हो रही इस मुलाकात के दौरान ही वेस्ट बैंक में एक सुरक्षा गार्ड पर चाकू का हमला करने पर एक फलस्तीनी को गोली मार दी गई। विदेश मंत्री कैरी से मुलाकात के बाद फलस्तीन के मुख्य वार्ताकार साए बरकत ने इसराइली कार्रवाई की सख्त निंदा की है। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी में एक संदिग्ध आत्मघाती महिला ने खुद को बम से उड़ा दिया, जिसमें चार और लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट में 10 लोग घायल हुए हैं। कल भी मैदुगुरी और योला शहर की मस्जिदों में 2 विस्फोट हुए, जिनमें कम से कम 50 लोगों की मौत की खबर है। इन हमलों की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इस क्षेत्र में हुए कई हमलों में इस्लामिक संगठन बोको हराम का हाथ रहा है। रूस का कहना है कि उसकी सेना सीरिया में पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त विद्रोही गुट FSA की मदद करने के लिए तैयार है। रूस के सरकारी टेलीविजन में एक इंटरव्यू के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने कहा कि FSA इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में वो मदद करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि वाशिंगटन इस मामले में किसी भी सहयोग से इनकार कर रहा है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि आतंकवाद निरोधी हमारी गतिविधियों में अमेरिका का मदद करने से इनकार करना एक बहुत बड़ी गलती है। हम इस पर जितना संभव है उतना सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए अहम बात है उन लोगों तक पहुंचना जो कुछ खास सशस्त्र संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे संगठन जो आतंकवाद के खिलाफ हैं। ये थे सर्गेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मिस्र के सायनाई प्रायद्वीप में एल अरिश शहर में सड़क के किनारे एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें मिस्र की सेना का एक अधिकारी और 2 जवान मारे गए हैं। इस इलाके में पिछले 2 दिनों में ऐसा ये दूसरा हमला था। कल हुए एक हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। इस्लामिक स्टेट से जुड़े चरमपंथी अक्सर सायनाई के सुरक्षा दलों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस ने देश के अल्पसंख्यक शिया समाज के जुलूस पर हुए हमले के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ढाका में अशुरा जुलूस पर हुए धमाकों में एक किशोर की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए। BBC समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, BBC इंडिया बोल।
भारत की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से एक दिन में करीब 80 लोगों की मौत होती है, ये कहना है केंद्र सरकार का। हाल ही में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध का हवाला देते हुए ये बात कही। इस अध्ययन के मुताबिक इन मौतों का सबसे बड़ा कारण सांस से में जाने वाले प्रदूषित हवा के कण हैं, जो बीमारी और समय से पहले मौत का कारण बनते हैं। हाल ही में गुड़गांव में हर मंगलवार को कार फ्री डे, यानी लोगों से कहा गया कि वे सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें और अपनी कारों का नहीं की घोषणा की गई। फिर दिल्ली में बीते गुरुवार कार फ्री डे मनाया, लेकिन एक सीमित इलाके में। यहाँ सवाल ये कि जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और जो उपाय किए जा रहे हैं, क्या वो काफ़ी हैं। क्या एक दिन के लिए कार फ्री डे मनाना सांकेतिक है या इसके कोई मायने भी हैं? आज इंडिया बोल में इसी मुद्दे पर होगी बहस। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फ़ोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह वर्ग, जिन्होंने गुड़गांव में कार फ्री डे मुहिम की शुरुआत की, और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में क्लीन एयर कैंपेन मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय। आप दोनों का स्वागत है और हमारे श्रोताओं का भी। सबसे पहले नवदीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कार्यक्रम की। आपने कार फ्री डे कैंपेन की शुरुआत की, आपको ये आइडिया कहाँ से आया और कितना असर आपको दिखाई पड़ा है इस कैंपेन का, क्योंकि आपको कई हफ्ते हो चुके हैं, कुछ हफ्ते हो चुके हैं इस कैंपेन को शुरू किए।
देखिए मैम, ये आइडिया हमें, जो वर्ल्ड कार फ्री डे है वो 22 सितंबर हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है और ये परंपरा 20 साल से चली आ रही है, तो उससे हमें ये आइडिया आया और इसको हमने करीब एक महीना प्लान किया गुड़गांव में इसको स्टार्ट करने से पहले। और जब हमने स्टार्ट किया तो उसके बाद हमें जो लोगों की जो रिस्पॉन्स मिला इसमें वो बहुत ही अच्छा था, और इसमें हमने पाया कि हर हफ्ते हम करीब 20,000 से 25,000 गाड़ियाँ जो सड़कों पे कम उतरती हैं और प्रदूषण के लेवल्स भी उस दिन कम रहते हैं। और इसके बाद हम लगातार हर हफ्ते, अब 5 हफ्ते हमारा ये कार्यक्रम चल चुका है, और हर हफ्ते हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कॉरपोरेट्स को इसके साथ जोड़ते जा रहे हैं।
तो आपको लग रहा है कि आपके इस कैंपेन का असर दिखाई दे रहा है, इस अभियान का, लोग प्रदूषण जो है उसका लेवल स्तर जो है नीचे गिरा है?
जी देखिए, इस कैंपेन को हम एक वे ऑफ लाइफ बनाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि दुनिया भर में जो विकसित देश हैं, शहर हैं, वहाँ गाड़ियाँ कम से कम की जा रही हैं और साइकिल और वॉकिंग और इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि ओस्लो में, जो एक सबसे विकसित देश है दुनिया का, उसमें भी बहुत कम कारों का इस्तेमाल हो रहा है।
जी आपके पास आना चाहेंगे विवेक, कि गुड़गांव में शुरुआत हुई, फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साइकिल पर इस मुहिम की शुरुआत की, लाल किले से इंडिया गेट तक, और करीब 6 से 8 किलोमीटर तक का दायरा रहा होगा ये, जहां पर कार नहीं चली, लेकिन दिन था छुट्टी का। क्या देखते हैं, कितनी गंभीरता नजर आती है या एक तरह से ये सिम्बॉलिक है, सांकेतिक है?
देखिए, एक सांकेतिक एक्सरसाइज था, पर इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। हमने प्रदूषण को एक दिन पहले मॉनिटर किया और जिस दिन कार फ्री डे था उस दिन भी हमने मॉनिटरिंग किया, और चूंकि कार फ्री डे जिस दिन सेलिब्रेट किया गया, चूंकि वो एक छुट्टी का भी दिन था, काफ़ी गाड़ियां कम थी सड़कों में, तो एक चीज़ ये प्रूफ हो गई कि गाड़ियां अगर कम है सड़कों में तो प्रदूषण में काफ़ी कमी आती है। करीबन 50% से ज़्यादा हमने देखा कि गिरावट आई है। तो दिल्ली में जो मुहिम चल रही है कि प्रदूषण कैसे कम हो, उस दिशा में एक ये काफी अच्छा पॉलिसी मैसेज सामने आया है। और दूसरा इसका जो पॉजिटिव आस्पेक्ट यह है कि सरकार की जो नीतियां होती हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए या पार्किंग चार्जेस बढ़ानी चाहिए, तो उसमें जो दिक्कत यह आती है कि लोग नहीं जुड़ पाते हैं, और एक पॉलिटिकल इशू भी होता है कि वो एक ये मान के चलते हैं कि चार्जेस या टैक्सेस नहीं बढ़ने चाहिए। तो चूंकि नतीजा दिख रहा है कि लोग अगर साइकिल चलाते हैं, सड़कें उनके लिए अगर दी जाएं, तो उसका नतीजा अलग हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक सरकार को भी ये मैसेज गया है कि इसे आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है और ऐसे पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जिससे कार से ट्रेवल करना एक जो सब्सिडी के तौर पर है कि हम काफी कम चार्जेस लेते हैं पार्किंग की, तो उस दिशा में एक कदम होगा और लोग इसमें जुड़ते जाएंगे।
जी, लोग जुड़ते जाएंगे। और लोगों का क्या कहना है, हमारे श्रोताओं का क्या कहना है, चलते अपने श्रोताओं के पास। जी कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, अपना नाम बताएं।
जी नमस्ते
जी,
मैं सूरज मिश्रा बोल रहा हूँ, भटरा घाट बीसी मधुनी बिहार से।
जी मिश्रा जी बताइए।
मैं कहना चाहता हूँ, जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केजरीवाल द्वारा उठाया गया यह कदम, चलाया गया यह कदम, कार फ्री डे सराहनीय है हमारे लिए, लेकिन ये कार फ्री डे को कार फ्री संडे करना चाहिए, क्योंकि जो है ना ऑफिसर के पास जो टाइम नहीं बचता है, वो अपने टाइम से जाएंगे ऑफिस, तो वो बाइक से जाएंगे या फिर कार से जाएंगे, लेकिन संडे को अगर करना चाहते हैं तो संडे को ये ज्यादा सफल रह सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे एक प्रश्न है कि आजकल इस देश में एक बहुत बड़ा प्रदूषण फैला हुआ है जो है राजनीतिक प्रदूषण, जिसे राहुल, सोनिया, लालू और केजरीवाल जैसे नेता जो है ना।
मिश्रा जी, आप जान रहे हैं कि हमारा मुद्दा जो है वो वायु प्रदूषण के ऊपर है और राजनीतिक प्रदूषण की इस बहस में कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए माफी चाहेंगे, आपको यहीं काट रहे हैं। अगले श्रोता की तरफ बढ़ते हैं।
जी
जी, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
मैं बाड़मेर से पठानगंज बोल रहा हूँ।
जी बताइए बाड़मेर से, आप क्या क्या कहना चाहेंगे, आप पूरी बहस सुन रहे हैं।
मैं बहस सुन रहा हूँ, मेरी राय ये है कि ये कार्यक्रम अच्छा ही है, लेकिन लोगों को जुड़ना चाहिए, लोगों से जुड़ने से ये होगा, नेताओं से सफल नहीं होगा।
तो लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं बताइए।
लोग तो भाग लेना चाहिए, हर व्यक्ति को 100% देना चाहिए, इससे ये अच्छा होगा, हमारे भारत में प्रदूषण बचेगा और लोगों की मृत्यु में कमी आएगी।
तो आप क्या राजस्थान में इस तरह की किसी तरह की मुहिम की शुरुआत करना चाहेंगे?
जी सर, हम तो बेहबाव हैं, इस तरह के कोई कार्यक्रम हो तो हम तो भाग खूब लेंगे।
और आप किससे ट्रेवल करते हैं, आप जब जाते हैं दूसरे जिले में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे, किस तरह से जाते हैं आप?
साइकिल से,
साइकिल
पैदल चलते हैं, पैदल नहीं तो साइकिल पे जाते हैं।
और आपको लगता है कि प्रदूषण बढ़ रहा है बाड़मेर में, कैसी स्थिति नजर आती है आपको?
प्रदूषण खूब है, मैं तो बाड़मेर जाता हूँ, प्रदूषण खूब है, बाजार में तो घूमना ही नहीं आता है,
मुश्किल होता है बाजार में घूमना,
मुश्किल बहुत।
तो आपको लगता है कि जनता को भी आगे बढ़कर जो है मदद करनी चाहिए,
इस तरह की मुहिम होना चाहिए, इस बात पर जनता को जागरूक होना पड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, अगले कॉलर की तरफ
बढ़ते हैं।
जी धन्यवाद, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी आपकी रेडियो की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है, तो प्लीज़ आप अपनी आवाज़ रेडियो की कम कीजिए और अपना प्लीज़ अपना सवाल बताएं और अपना नाम बताएं।
नमस्कार
जी,
मैं कह रहा हूँ वायु प्रदूषण से बहुत नुकसान हो रहा है।
जी आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
अजय कुशवाहा, जिला कुशनगर उत्तर प्रदेश।
जी अजय जी बताइए।
सरकार को इसका पूरा पालन करना चाहिए, इस नियम का।
आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? हमारे साथ दो मेहमान हैं, एक पुलिस कमिश्नर हैं नवदीप सिंह वर्क और एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के हैं जिन्होंने क्लीन एयर कैंपेन मैनेजर हैं वो, इनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे।
हम कहना चाहते हैं कि ये क्या कर सकेंगे इतने दिनों में।
जी विवेक, इनके पास चलते हैं। विवेक जी, इस ये सवाल पूछना चाह रहे हैं अजय जी कि क्या इससे असर पड़ेगा, इस तरह के अभियान जो शुरुआत हुई है उनसे असर पड़ेगा?
देखिए, इससे तीन तरह की चीजें, तीन तरह के मैसेजेस जाते हैं, ये अभियान जैसे शहरों में बढ़ता जाएगा तो उसमें यह है कि जो दबी हुई आवाज है, जो कि लोग जो साइकिल चलाते हैं या जो पैदल चलते हैं, उनको दिन प्रतिदिन बहुत सारी समस्याओं से जुड़ना पड़ता है। एक तो रोड सेफ्टी का मामला है, एक्सीडेंट होने की गुंजाइश होती है, क्योंकि सड़कों की जो स्थिति यह है कि वो कारों के लिए ही बनाई जा रही है। तो एक डिमांड ये होगा कि भाई सड़कें सेफ बनाई जाएं दूसरे यूजर्स के लिए भी, और एक डेमोक्रेटिक वे में बनाई जाएं ताकि एक इक्वल राइट हो सबका, ताकि जो बस में जाने वाला है या जो साइकिल में जाने वाला है या जो वॉकिंग करता है, वो एक कैप्टिव यूजर न रहे, एक चॉइस यूजर बने। ये ना हो कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगी गाड़ियां, वो सिर्फ साइकिल में चल रहे हैं, तो उनको हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देने का मैसेज जा रहा है। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे दूसरे शहर से जुड़ते जाएंगे तो एक माहौल बनेगा कि जिसमें एक जिम्मेदारी भी आएगी सरकार की कि वैसी सुविधाएं दी जाएं, और लोगों के तौर पर ये जरूरी है कि वो आपस में संगठित होकर, क्योंकि लोगों के कई संस्थाएं ये होती हैं कि कई सिटीजन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको भी डिमांड रखनी पड़ेगी अपने लोकल एरिया के जो लीडर्स होते हैं या जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी महकमे की, उनके सामने डिमांड रखनी पड़ेगी कि भाई हमारे एरिया में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, कनेक्टिविटी क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारे साइकिल्स बच्चे क्यों नहीं चला सकते हैं सड़कों में। तो एक डिमांड भी लोगों की तरफ से जानी चाहिए, और उनकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि उसको पुश करें। और डेफिनेटली ये प्रयास अगर हर तरह से हो रहा है, सरकारें भी अगर सोच रही है इस दिशा में, तो इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में,
एक तरह का सकारात्मक संदेश जाएगा। जी नवदीप जी, आपको यहाँ शामिल करना चाहेंगे, आपने गुड़गांव में शुरुआत की लेकिन ये दिल्ली की समस्या नहीं, हालांकि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, अगर अन्य राज्यों की बात की जाए तो किस तरह से, जिस तरह से ये विवेक जी बोल रहे हैं कि लोगों को संगठित करने की जरूरत है, लेकिन एक कदम किसी को पहले पहल करनी होगी, तो किस तरह से ये पहल की जा सकती है राज्यों की बात की जाए तो उसमें?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये पहल करनी पड़ेगी, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वही इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा सकते हैं। और लोकल लेवल पे हर शहर में, हर शहर की अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग डायनेमिक्स हैं, तो वहाँ के जो लोकल जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ये पहल करनी पड़ेगी।
जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जी, अपना नाम बताएं।
हेलो, नमस्कार।
जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
मैं गांव सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी उप जितेंद्र सूर्यवंशी बात कर रहा हूं। मैडम जी और सर जी, आपको नमस्कार।
जी नमस्कार बसंती जी, पूछिए अपना क्या, आपका क्या सवाल है?
जी मैं जानना चाह रहा हूँ, सर ने जो बात बताई अभी जो वायु प्रदूषण के बारे में साइकिलों का, तो एक गाना याद आता मुझे, चांदी की साइकिल सोने की सीट। हेलो
जी, जी सुन रहे हैं, बताइए।
चांदी की साइकिल सोने की सीट, तो मतलब वायु प्रदूषण में वाकई में साइकिल चालक, अभी भी गांव में मैं साइकिल ही चलाता हूँ, जैसे साग सब्जी ले जाता हूँ तो साइकिल चलाता हूँ, इतनी भीड़ भड़क के मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, तो इतना धुआं निकलता है जो दम घुटता है। तो इसको रोकने के लिए सर से मेरी एक गुजारिश है कि क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग तो कर सकते, सरकार की ओर से क्या करना चाहिए?
जी आप विवेक से ये सवाल पूछते हैं, विवेक ये पूछ रहे हैं कि छोटे शहरों में, गांवों में बात की जाए तो साइकिल चलाते हैं लोग, कम होती हैं गाड़ियां, अगर ज़िले स्तर तक पहुंचे तो वहां पर गाड़ियों का स्तर ज़्यादा हो जाता है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं विवेक, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की पिछले साल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि दुनिया के 1600 शहरों में से दिल्ली जो है, दिल्ली की हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, क्योंकि उसमें PM2.5 पार्टिकल्स हैं। और श्रोताओं को यहां बता दें कि PM2.5 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, वो वाहनों से निकलने वाला धुआं है और धातुओं की जो प्रोसेसिंग होती है उससे निकलने वाले प्रदूषित कण मिलकर उसे बनाते हैं। तो दिल्ली में 2 दशकों में जो प्रदूषण का मुद्दा जो है मुखर हुआ, उसके बाद कोर्ट के दखल के बाद CNG आई, अब मेट्रो चल रही है, लेकिन इतना कम क्यों असर दिखाई दे रहा है, कि क्यों कम नहीं हो पाया है अभी भी वायु प्रदूषण?
देखिए इसमें अगर आप ट्रेंड देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ये नजर आया है कि हमने टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव की, क्लीन फ्यूल हमने लाया, स्वच्छ फ्यूल जो होता है, गैस भी हमने लाया, गाड़ियां उसमें चल रही है, परंतु एक चीज के ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वो ये था कि बाइसिकल का जो शेयर होता है ट्रैवल में, वो 35% से वो करीबन अभी 10% आ गया, ठीक है। वॉकिंग का शेयर अभी भी काफी अच्छा है, करीबन 30% लोग उससे ट्रैवल करते हैं, परंतु बस का जो शेयर है वो 60% से 40% हो गया। बट इस दौरान कारों की संख्या और प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि शहर में आज प्रतिदिन 1400 नई गाड़ियां सड़कों में आ रही हैं, क्योंकि हम उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक नीतिगत फैसला हमें लेना पड़ेगा, सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया है कि 80% लोग 2020 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वॉकिंग साइकिलिंग का इस्तेमाल करें, ये नीतिगत फैसला है। परंतु दूसरा फैसला जो सरकार लेके चलती है कि फ्लाईओवर्स भी बना रहे हैं हम, सड़कें भी बना रहे हैं, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन में है। तो सरकार को एक नीतिगत कोहरेंस लाना होगा जिससे हमारा जो प्रयास हो कि 80% शेयर जो हम इम्प्रूव कर सकें, और साथ में हमारी टेक्नोलॉजी, डीजल की गाड़ियां कम हो, हमारी क्लीन फ्यूल के स्टैंडर्ड्स पुख्ता हो, क्योंकि देखिए हमारा भारत वर्ष जो है वो गाड़ियों के प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा प्लेयर है
जी।
और हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ग्लोबल प्लेयर्स हैं। अभी आपने फॉक्सवैगन का मामला सुना होगा,
बिल्कुल,
कि अमेरिका में किस तरह से उन्हें प्रदूषण किया
जी।
और चीटिंग पकड़ी गई, तो हमें ये देखना होगा कि
गाड़ियां वापस लेनी पड़ी उन्हें जी,
वापस लेनी पड़ी। तो और एक साइकिल यूजर जो होता है वो एक हीरो है, ये मान के चलना होगा कि जो कि जीरो एमिशन मोड है, उसका सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है प्रदूषण कम करके रखने में
जी।
तो हमें ये जो शिफ्टिंग है वो चेंज करनी होगी, कि मानसिकता जो है ट्रैफिक में, मानसिकता ये होनी चाहिए कि एक कार चलाने वाला एकदम लास्ट प्रायोरिटी में आना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी में आना चाहिए जो साइकिल चलाता है, वॉकिंग करता है और बस में जाता है, और लास्ट प्रायोरिटी में कार चलाने वाला आना चाहिए। तो देखिए शहर में आप किस तरह से परिवर्तन होता है। यूरोप में देखा गया है कि ऐसा हो रहा है, बीजिंग भी कोशिश कर रही है।
जी विदेशों पर आएंगे आप, हाँ और देशों की भी बात करेंगे। नवदीप जी से पूछना चाहेंगे, नवदीप जी ये बताइए कि सार्वजनिक वाहनों के लिए किस तरह से जो जनता है उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। साइकिल की बात करते हैं कि साइकिल एक तरह से सुरक्षा का भी मामला आता है कि सेफ रोड्स नहीं है हमारे यहाँ, किस तरह से गाड़ियाँ चलती हैं, तो इनके लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है लोगों को।
देखिए मैं बिल्कुल मानता हूँ कि साइकिलिस्ट के लिए हमारी रोड सेफ नहीं है, बट हमने एक शुरुआत की है और हम सिविक एजेंसीज के साथ मिल करके साइकिलिंग ट्रैक्स बनवाने की हमारी प्लान्स हैं और उस तरफ हम ये कदम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आपने की, उसमें हम ट्यूजडे वाले दिन, मंगलवार वाले दिन जब हमारा कार फ्री डे होता है, तो उस दिन हम काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा चलवाते हैं, चाहे वो मेट्रो की एक्स्ट्रा सर्विसेज हों, चाहे वो लोकल बसेस की हों, वो हम एक्स्ट्रा चलवाते हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो।
तो क्या हम इस तरह की, जिस तरह से आपने बोला कि बसेस की सुविधाएं, जो सार्वजनिक वाहन हैं उनकी सुविधाएं बढ़ा देते हैं, क्या कहेंगे विवेक, क्या हम तैयार हैं इसके लिए, क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सुविधाएं देने की सक्षमता है?
सक्षमता काफी है, पर हमारा जो इंजीनियरिंग डिवीजन है, जो हमारे जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है और कई जो महकमे हैं जो कि सड़कें बनाती हैं, उनके रूल बुक्स में हमें लाना पड़ेगा कि आप कोई सड़क तब तक नहीं बना सकते जब तक उसमें बेसिक फैसिलिटीज ना दें आप ये जो वॉकिंग साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, इसके बिना आपकी सड़क नहीं बनेगी, ये हमें रूल में लाना होगा। और जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, जो जैसे गुड़गांव की आप बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, उन शहरों में और दिल्ली की बात कर लें, सभी सड़कों की ऑडिट करके आप ये बताइए कि भाई हम इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 5 किलोमीटर के लिए लेन बनाई है और उसके बाद कोई लेन नहीं है, एक साइकिल यूजर क्या करेगा? इंटरसेक्शन ऐसे होते हैं जो कि चौक जो हम कहते हैं, चौक में टर्निंग लेना एक साइकिलिस्ट के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, तो हम वो सेफ कैसे बना सकते हैं? और ये चीजें ऐसी हैं कि इनका रॉकेट साइंस नहीं है, और इसके सारे प्लानिंग कैसे किया जाए और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कैसे किया जा सकता है। तो हमें ये जो कंपल्सरी करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी करना पड़ेगा, तब देखिए आप शहर में कैसे सुधार होता है।
सुधार होता है जी। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं विवेक जी। जी अपना नाम बताएं।
जी नमस्कार
जी।
जी मैं नंद किशोर सिंह बोल रहा हूँ, रामपट्टी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार से।
जी नंद किशोर जी आप बताइए, आप पूरी बातचीत सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं
हम? जी मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए दिल्ली में ज्यादा प्रदूषित शहर है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है जनसंख्या के हिसाब से, तो दिल्ली में अगर इस तरह की योजना चलती है, अभियान चलती है साइकिल का, तो मुझे नहीं लगता कि ये सभी वर्ग के लोग चलाएंगे, क्योंकि साइकिल वाहन ऐसा है जो हर किसी को चलाने भी आता होगा भी नहीं होता होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह के लोग नहीं चला पाएंगे जो बड़े बड़े लोग हैं। इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि कार इस तरह से लोग को चलाना चाहिए कि जो बहुत जरूरी में है, जरूरी काम है, या तो ऐसे काम है जैसे चलानी चाहिए। ऐसे
जी जब जरूरत हो तभी कार अपनी निजी गाड़ियां लोग निकालें, नहीं तो ना निकालें, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात कही नंद किशोर जी आपने। विवेक जी आपसे यहां ये जानना चाहेंगे कि अगर विदेशों की बात की जाए तो कई ऐसे देश हैं जहां राजनेता भी जो है सार्वजनिक वाहनों में ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करते हैं, इस भारत में इस चलन की शुरुआत क्यों नहीं हो सकती है?
देखिए इसमें एक क्लास डिवाइड एक हमने बना के रखा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हमारी लाल बत्ती की गाड़ियां जो बंद की हैं, वो समाज को ये मैसेज देने के लिए की है कि भाई सारे लोग इक्वल हैं। और इस तरह से जो प्रयास हमारे हो रहे हैं कि भाई लोगों में इक्विटी आए, समाज को ये लगे कि सारे लोग इक्वल हैं, सड़कों में भी इक्वल हैं और प्रशासन में भी इक्वल हैं, तो ये प्रयास होना चाहिए कि ऐसी ना हो कि अमीर की सवारी कार हो और गरीब की सवारी साइकिल हो, इस मानसिकता से हमें ऊपर उठना पड़ेगा
जी। नवदीप जी, ये
सारे लोगों की सवारी बने
जी। नवदीप जी, किस तरह से मानसिकता को, ऐसी मानसिकता बनाई जाए कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करें, चाहे वो राजनेता हो या आम जनता हो या गरीब हो अमीर हो जो भी हो।
देखिए बड़ा सिंपल है, जब हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी, स्वच्छ होगी, उसका वातावरण ठीक होगा, तो सब लोग उसी में ट्रैवल करेंगे
जी। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारना होगा। हमारे अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो जी, मैं योगेश कुमार यादव, ग्राम रामदेवपुर, जिला गाजीपुर से बोल रहा हूँ
जी। आपका नाम मैं नहीं सुन पाई हूँ, दोबारा बताएं प्लीज।
योगेश कुमार यादव।
योगेश जी, जी बताइए योगेश जी।
जी मैं कह रहा हूँ कि जो प्रदूषण को दूर करने के लिए
जी
साइकिल का उपयोग ज्यादा करना चाहिए।
जी साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। विवेक जी, अगर हम बात करें विकासशील देशों की, तो चीन में आप देख सकते हैं कि स्मॉग बहुत दिखाई देता है, एकदम वायु में दिखाई देता है। और ग्रीन पीस के मुताबिक जो संस्था है उसका कहना है कि बीजिंग, शंघाई और हांगकांग ऐसी जो सिटीज़ हैं जहां पर बच्चों को अस्थमा और सांस लेने की तकलीफ़ का वो शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश में बुरे हालात है, पाकिस्तान में है। तो ये समस्या विकासशील देशों में क्यों ज़्यादा नज़र आ रही है?
विकासशील देशों में भी हो रही है, और भारत में अगर कई शहरों में स्टडी हुई है, इनफैक्ट दिल्ली में जो स्टडी हुई है उसमें ये पाया गया है कि 3 गुना, मतलब 45% बच्चों में जो सांस लेने और छोड़ने की जो क्षमता होती है, लंग फंक्शन हम जिसको कहते हैं, वो काफी कम है। और अगर ये बचपने में कम है तो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो अगर हम लोग प्रदूषण को सिर्फ ये मान के चलें कि ये आएगा और चला जाएगा, ये नहीं है, उसके लॉन्ग टर्म दुष्प्रभाव भी हैं और शॉर्ट टर्म दुष्प्रभाव भी हैं। तो ये बहुत सीरियस मैटर है पब्लिक हेल्थ का, और पब्लिक हेल्थ का अगर बहुत बड़ा सीरियस मैटर है तो हमारी जो इससे लड़ने की जो क्षमता है उसे हमें युद्ध स्तर पर करना होगा। हम डिले नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये काम हम 5 साल बात करेंगे। ये जो कार फ्री डे का प्रयास चालू हुआ है
जी,
और हम कह रहे हैं कि उसी दिन हमारी बसें अच्छी चलेंगी या फिर उसी दिन हम साइकिल से चलेंगे, इस मानसिकता से दूर हटके हमें ये करना पड़ेगा कि बसें प्रतिदिन सही वक्त पे आएंगी, प्रतिदिन ट्रैफिक पुलिस ये इंश्योर करेगी कि वॉकर्स और साइकिलिस्ट ट्रैफिक का हिस्सा है, उनके लिए सेफली वो मूव करें, उनके लिए कंजेशन ना हो। तो ये जो प्रतिदिन ये पॉलिसी में लानी होगी, और ट्रैफिक पुलिस को भी सचेत करना होगा कि आपकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि सारे सिर्फ कार को कंजेशन से नहीं हटाना है, आपको ये इंश्योर करना है कि जो रोड सड़क क्रॉस कर रहा है या सड़क में चल रहा है या जो साइकिल चला रहा है वो सुरक्षित रहे
जी। एक और बात हम इस जो है क्योंकि हम लोग कार्यक्रम के अंत तक पहुंच रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि वायु प्रदूषण का जलवायु परिवर्तन या कहें क्लाइमेट चेंज पर अप्रत्यक्ष असर पड़ता है। और भारत की बात की जाए तो भारत ने जर्मनी के बॉन में जो है यूएन सम्मेलन में कहा था कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में वो 33-35% की कमी का उन्होंने संकल्प लिया था। क्या किया जाना चाहिए? समय बहुत कम है विवेक
जी। इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हमें करनी होंगी इमीडिएटली। एक तो हमारे ये जो कारों की संख्या हमें कम करनी होगी, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में एक बस में ट्रेवल करने के पर्सन से 6 गुना ज्यादा कम एफिशिएंट होता है अगर आप बात करें उसकी। तो कारों की संख्या बहुत ही कम करनी होगी, और दूसरा ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी स्केल अप करना होगा, और दूसरा यह है कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना पड़ेगा, और दूसरा यह है कि जो प्रदूषण हो रहा है डीजल व्हीकल से उसे ब्लैक कार्बन निकलता है, यानी काला धुआं हम जो कहते हैं
जी,
वो भी इसको अट्रैक्ट करता है, और डीजल के जो धुएं से कैंसर होने की संभावना है। तो ये दोनों बेनिफिट हमें मिलेंगे अगर हम डीजल व्हीकल्स को कंट्रोल करेंगे और उनमें क्लीन फ्यूल लाएंगे। तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो मानक हैं, उनको ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड से हमें जल्दी लाना होगा। ऑटो इंडस्ट्री अभी भी बता रही है कि 2024 तक करेंगे इसे, परंतु ये मान्य बिल्कुल ही मान्य नहीं है कि वायु प्रदूषण जब इतनी बड़ी समस्या है तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते जब इसके दूरगामी हेल्थ बेनिफिट्स होंगे।
जी बिल्कुल,
तो सरकार को सख्त होना पड़ेगा
जी, सरकार को सख्त होना पड़ेगा और सार्वजनिक परिवहन को सुधारना होगा। आज इंडिया बोल में इसी मुद्दे पर बात हुई थी कि वायु प्रदूषण में कैसे सुधार लाया जाए, और हमारे साथ जुड़े थे पुलिस कमिश्नर गुड़गांव के नवदीप सिंह वर्क और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट में क्लीन एयर कैंपेन मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय। श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू पायलट के तौर पर शामिल करने की इजाज़त दे दी है। इसराइली और फलस्तीनियों के बीच जारी हिंसा को ख़त्म करने के लिए अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने फलस्तीनी नेता महमूद अब्बास से मुलाकात की है। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी में एक संदिग्ध आत्मघाती महिला ने खुद को बम से उड़ा दिया, जिसमें 4 और लोगों की मौत हो गई है। रूस का कहना है कि उसकी सेना सीरिया में पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त विद्रोही गुट FSA की मदद करने के लिए तैयार है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ इंडिया बोल में आज बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।